हम ये देखते हैं ये जो हमारे यहाँ दसातीर बने हुए हैं, जमहूरियत जिन मुल्कों का तर्ज हुक्मरानी है, वहाँ पर एक जुमला कहा जाता है कि जी हाकमियत अवाम की। कुरान मजीद को हम पढ़ते हैं, उलमाए कहते हैं कि भाई ये जुमला तो अल्लाह ताला के साथ खास है, परवरदिगार है, आलम का पालनहार और रब्बे जुलजलाल, उसके साथ तो कहा जा सकता है कि उसकी हाकमियत होनी चाहिए। हम तो बंदे हैं, गुलाम हैं उसके, ये कैसे ज़मीन पर दावा कर सकता है कोई शख्स? चुनाचे इस तरह की कोई शिक अगर किसी दस्तूर में हो तो वो खिलाफ इस्लाम है। हाकमियत अवाम की क्या फरमाते हैं?
देखिए, अल्लाह ताला की हाकमियत तो इस कायनात पर कायम है, यानी उसके लिए मुझे कुछ नहीं करना। मैं जब अल्लाह ताला पर ईमान लाता हूँ तो अल्लाह की इस हाकमियत को कबूल कर लेता हूँ, और फिर उसके बाद मैं सिर्फ यही नहीं कि उसको इलाह मानता हूँ, उसको रब भी मानता हूँ, इस कायनात का बादशाह भी मानता हूँ। ये मेरे ईमान का तकाज़ा है। ये चीज़ कुरान मजीद में जगह जगह बयान हुई है, इस हद तक ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। लेकिन जब सियासत में ये कहा जाता है कि आवाम की हाकमियत है, तो उसका मतलब क्या है? उसका मतलब यह है कि जो सियासी नज़म बनाया गया है उसमें फ़ाइनल अथॉरिटी कौन है, कौन फैसला करेगा? यानी यहाँ तक कि अगर मज़हब के मामले में भी कोई इख्तलाफ होगा तो फैसला कौन करेगा? तो उसमें ज़ाहिर है कि दो ही सूरतें हो सकती हैं, या फैसला इस कायनात का परवरदिगार सुनाएगा आसमान से। वो जब तक सुनाता था उस वक्त तक हर एक को उसे मानना था, अगर वो नहीं सुनाएगा तो फिर सियासी नज़म में फ़ैसला अवाम करेंगे। तो मेरे नज़दीक ये एक बात अपनी ज़ात में दुरुस्त है, लेकिन उसका गलत महल में इस्तेमाल है, जिसके बारे में लोगों को मुतनब्बे करना चाहिए। ये कायनात की हाकमियत, मेरे वजूद की हाकमियत यहाँ ज़ेर बहस नहीं है। नज़म सियासी में आखिरी फ़ैसला किसके पास है? तो वो मेरे नज़दीक अवाम ही के पास है।
जैसे मतलब हम कहते हैं आमतौर पर, भाई इस घर का मालिक मैं हूँ, तो उस वक्त पेश नज़र ये नहीं होता कि मैं ये दावा कर रहा होता हूँ कि असल मालिक मैं हूँ, बल्कि मैं तो एक जो वहाँ पर ज़मीन है उसमें अपना तसरुफ का की मिल्कियत को साबित कर रहा हूँ, वरना मालिक तो अल्लाह हर चीज़ का।
बिल्कुल उसी तरह जैसे रब का लफ्ज़ है। आप देखिए ना, अरबी ज़ुबान में रब का लफ्ज़ आपके आका के लिए इस्तेमाल हो जाता है, जिसके यहाँ आप काम करते हैं, कुरान में इस्तेमाल हुआ हुआ है। अच्छा, इसी तरह रब्बुद्दार आप कहते हैं, घर का मालिक कहते हैं ना। ये सब आपने देखा होगा, वो जो मशहूर रवायत है जिसमें ये बताया गया है कि क़यामत के कुर्ब की क्या निशानियाँ हैं, तो उसमें क्या है?
रब्बतुहा
तालहदिलमा तो रब्बा तहा, तो वहाँ भी रब्बा का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है। तो मेरे नज़दीक ये हाकमियत का लफ्ज़ यहाँ उस्मानी में इस्तेमाल नहीं हो रहा। अगर आप अल्फाज के साथ जाएंगे तो ये बिल्कुल ऐसी ही बात होगी जैसे बाज़ मज़हबी लोग ये कहते थे कि देखिए, इस दुनिया में सबसे बड़े कायद की हैसियत तो पैगम्बरों को हासिल है, तो कायद आज़म को कायद आज़म कैसे कहा जा सकता है? तो इसमें लोगों को तवज्जो दिलानी चाहिए कि अल्फाज अपनी ख़ास नौईयत में बोले जाते हैं। जब हम नज़म सियासी के बारे में हाकमियत का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, मैं इस वक्त वो बहस नहीं कर रहा कि जिसमें यह कहा जाता है कि हाकमियत की क्या औसाफ़ है, उसे गलतियों से पाक करार दिया जाता है, वो बहस बिल्कुल एक लायानी बहस है। इसमें सादा चीज़ ये है कि आखिरी फ़ैसला किसके पास है? क्या बादशाह के पास है? क्या पार्लियामेंट के पास है? किसके पास है आखिरी फैसला? आखिरी फैसला किसी मुल्क के लोगों के पास है। ये उनका हक है कि वो अपने फैसले करें, इसलिए कि जब ये कानून बना दिया जाएगा कि अमरोहम शूरा बैनहुम, तो फिर बैनहुम में लोग ज़मीर का मर्जा हैं, ये फ़ैसला उन्हीं को करना है। तो मेरे नज़दीक ये ताबीर इसकी ताबीर है। लफ्ज़ हाकिमियत जिस तरह से सॉवरेनिटी वगैरह ज़ेर बहस आया है हमारे यहाँ, ख़ास तौर पर इल्मे सियासत की बहसों में, उसमें जब लोगों ने देखा कि ख़ास तरह की फ़लसफियाना बहस हो रही है, तो उन्होंने महसूस किया कि जो औसाफ वहाँ बयान किए जा रहे हैं वो तो अल्लाह ताला ही में हो सकते हैं, तो उनको बयान करने की ज़रूरत ही क्यों है? यहाँ एक सियासी फ़ैसला हम कर रहे हैं, बिल्कुल ऐसे ही जैसे किसी घर के मालिक के बारे में फ़ैसला कर रहे होते हैं, किसी दफ्तर के मालिक के बारे में फ़ैसला कर रहे होते हैं। तो यहाँ असल फ़ैसला कुन अथॉरिटी अवामी है।